एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में आप कह सकते हैं आर्थिक सोच को और नीतियों को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मिल्टन और रोज फ्रीडमैन की बहुत ही मशहूर किताब फ्री टू चूज की, मतलब चुनने की स्वतंत्रता। अब देखिए, किताब तो आई थी 1980 में, पर इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं ना, जैसे व्यक्तिगत आज़ादी, आर्थिक तरक्की और ये सवाल कि भाई समाज में सरकार का ठीक ठीक रोल क्या होना चाहिए, ये आज भी उतने ही बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा अहम लगते हैं, है ना?
सही कहा, बिल्कुल सही। ये ऐसी बहसें हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और ये किताब इन मुश्किल सवालों पर एक बहुत ही साफ, एक सशक्त नजरिया देती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मूल विचार हैं उनको जरा समझा जाए।
हाँ,
और देखें कि हमारे आज की दुनिया के लिए उनके क्या मायने हैं।
चलिए तो सबसे पहले इन लेखकों के बारे में ही थोड़ी बात कर लेते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का नाम तो खैर अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा माना जाता है।
बहुत बड़ा। मिल्टन फ्रीडमैन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे, बिना शक। नोबेल पुरस्कार भी मिला उन्हें 1976 में।
हाँ हाँ,
वो शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आप कह सकते हैं एक प्रमुख विचारक थे और मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट के बहुत जोरदार समर्थक थे।
अच्छा।
और उनकी एक खास बात यह थी कि वो सिर्फ एकेडमिक बहसों में ही नहीं उलझे रहे, उन्होंने मुश्किल आर्थिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। किताबों से, लेखों से, टीवी सीरीज भी बनाई उन्होंने।
अरे वाह।
उनकी एक और किताब थी पहले, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 की, उसने एक तरह से इस किताब फ्री टू चूज के लिए जमीन तैयार कर दी थी।
अच्छा, और उनकी पत्नी रोज फ्रीडमैन, उनका क्या रोल था इस किताब में? क्या वो भी अर्थशास्त्री थी?
बिल्कुल, रोज फ्रीडमैन खुद भी एक बहुत कुशल प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थी, शिकागो विश्वविद्यालय से ही पढ़ी थी वो भी। और वो मिल्टन की सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक सहयोगी थी। ऐसा कहा जाता है कि मिल्टन के जो गहरे, थोड़े जटिल अकादमिक विचार थे ना, उनको सरल, साफ और पढ़ने लायक भाषा में लाने में रोज का बहुत बड़ा हाथ था। शायद इसीलिए उनकी किताबें इतनी चलीं, आम लोगों तक पहुंची।
तो ये किताब मतलब किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं बल्कि दो लोगों के दशकों के अनुभव का निचोड़ है।
हाँ, अब बिल्कुल सही समझी। इसमें आपको एकेडमिक कठोरता भी मिलेगी और आम इंसान से बात करने की कला भी। ये उनके सालों के रिसर्च, उनके पढ़ाने के अनुभव और जो नीति निर्माण की बहसें होती हैं,
हाँ,
उनमें उनकी भागीदारी का सार है। वो सिर्फ सिद्धांत बनाने वाले नहीं थे, वो अपनी विचारधारा के लिए बहुत जोशीले थे, पैरोकार थे। और जैसा आपने कहा, इसी नाम की टीवी श्रृंखला भी बहुत सफल रही थी। किताब का जो सबसे बुनियादी तर्क है वो ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब अपनी मर्जी से कमाने, खर्च करने, निवेश करने की आज़ादी, और राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। फ्रीडमैन दंपत्ति का मानना था कि एक के बिना दूसरा मुमकिन ही नहीं है।
अच्छा,
मतलब आर्थिक आज़ादी नहीं तो राजनीतिक आज़ादी भी नहीं।
हाँ, उनका तर्क यही था। उनके हिसाब से मुक्त बाजार वाली जो पूंजीवादी व्यवस्था है, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, वो सिर्फ देश को अमीर ही नहीं बनाती बल्कि सरकार की ताकत पर भी एक तरह का अंकुश लगाती है, और ये नागरिकों की आज़ादी के लिए बहुत जरूरी है।
तो फिर सवाल उठता है कि एक आज़ाद समाज में सरकार का सही काम क्या हो, कितना दखल दे सरकार कितना नहीं, यही सवाल है क्या? एकदम सही, यही मूल प्रश्न है। किताब दो तरह की व्यवस्थाओं में साफ फर्क करती है। एक तरफ है केंद्रीय योजना, सेंट्रल प्लानिंग, जहां सरकार सब कुछ तय करती है, क्या बनेगा, कितना बनेगा, दाम क्या होगा।
हाँ, जैसे पुराने सोवियत संघ में होता था।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मुक्त बाजार के जरिए स्वैच्छिक सहयोग, वॉलंटरी कोऑपरेशन, जहां लोग अपनी मर्जी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक दूसरे से लेन देन करते हैं।
और जाहिर है फ्रीडमैन का झुकाव दूसरी तरफ है, मुक्त बाजार की तरफ, पर ऐसा क्यों, क्या दलील देते हैं वो?
देखिए, उनका मुख्य तर्क इतिहास और नतीजों पर टिका है। वो कहते हैं कि अब इतिहास देख लीजिए, जहां भी बाजारों को थोड़ी आजादी मिली वहां समृद्धि आई, नए नए आविष्कार हुए, लोगों का जीवन बेहतर हुआ। और इसके उलट, जहां सरकार ने सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की वहां अक्सर अकुशलता दिखी, बर्बादी हुई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कम हुई। वो ये भी दलील देते हैं कि हमारी आज की कई समस्याएं, जैसे महंगाई है या आर्थिक विकास धीमा है, शिक्षा की हालत ठीक नहीं।
हाँ, ये सब तो है।
ये अक्सर सरकारी दखल का ही नतीजा होती है। भले ही सरकार का इरादा अच्छा रहा हो, ये दखल लोगों की अपनी पहल करने की क्षमता को कम कर देता है और बाजार जैसे काम करता है उस प्रक्रिया को बिगाड़ देता है।
तो मतलब किताब सिर्फ आलोचना नहीं कर रही है, एक रास्ता भी दिखा रही है।
हाँ, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाती बल्कि एक समाधान, एक नजरिया पेश करती है। इसका मकसद है आम लोगों को क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स, यानी वो विचारधारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार और मुक्त बाजार पर जोर देती है।
अच्छा।
उसके मूल सिद्धांतों से परिचित कराना, ये समझाना कि असली स्वतंत्रता और समृद्धि का रास्ता ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत चुनाव और कम से कम सरकारी नियंत्रण से होकर जाता है। इसीलिए कई लोग इसे सिर्फ किताब नहीं, एक तरह का मैनिफेस्टो मानते हैं।
आपने शुरू में कहा था कि किताब कुछ सरल उदाहरणों से बात शुरू करती है।
हाँ, और शायद सबसे मशहूर उदाहरण वो पेंसिल वाला है।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
किताब दिखाती है कि एक मामूली सी पेंसिल बनाने के लिए भी दुनिया भर के हजारों लोगों का अनजाना सहयोग चाहिए होता है। लकड़ी काटने वाला, ग्रेफाइट खोदने वाला, फैक्ट्री का मजदूर, शिपिंग कंपनी, दुकानदार।
सोचो जरा, कोई एक बॉस इन सबको ऑर्डर नहीं दे रहा, फिर भी पेंसिल बन जाती है। ये स्वैच्छिक सहयोग की ताकत है। फिर किताब आगे बढ़कर व्यापार, महामंदी, कल्याणकारी राज्य, शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों पर सरकारी नीतियों की आलोचना करती है।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार की शक्ति से। ये पेंसिल वाली कहानी इसी से जुड़ी है ना?
हाँ बिल्कुल, यहीं से बात वाकई दिलचस्प होती है। पहला अध्याय इसी पर है। फ्रीडमैन समझाते हैं कि कैसे लाखों करोड़ों लोगों की अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिना किसी मास्टर प्लान के अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाती हैं।
बिना किसी कंट्रोलर के कैसे? ये होता है कीमतों के जरिए, प्राइस सिग्नल्स। कीमतें एक तरह की भाषा हैं। वो बताती हैं कि किस चीज की जरूरत ज्यादा है, किसकी कम है, कहां पैसा लगाना फायदेमंद है। ये जानकारी इतनी ज्यादा होती है कि कोई एक व्यक्ति या सरकारी दफ्तर इसे जमा ही नहीं कर सकता।
अच्छा, और पेंसिल का उदाहरण इसे कैसे दिखाता है?
ये उदाहरण है ही कमाल का। सोचिए एक मामूली पेंसिल, लकड़ी चाहिए, कहीं पेड़ कटा होगा, लीड के लिए ग्रेफाइट, कहीं खान से निकला होगा, उस पर पेंट, उसके लिए अलग केमिकल, रेजर को पकड़ने वाला धातु का टुकड़ा, उसके लिए मेटल कहीं से आया होगा, और खुद रेजर।
हाँ हाँ।
इन सब चीजों को बनाने और एक जगह लाने में हजारों लोग शामिल हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषा बोलते हैं, शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं,
और शायद पसंद भी ना करते हों।
बिल्कुल, फिर भी वो सब मिलकर पेंसिल बना रहे हैं। ये कैसे हो रहा है?
कैसे?
ये हो रहा है स्वैच्छिक लेन देन से। हर कोई अपना काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे बदले में कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है।
अच्छा,
लकड़ी वाला लकड़ी बेच रहा है, खान वाला ग्रेफाइट, फैक्ट्री वाला पेंसिल। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और कीमतें बता रही हैं कि क्या करना फायदेमंद है। फ्रीडमैन इसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त व्यवस्था, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, एक ऐसी व्यवस्था जो अपने आप पनपती है बिना किसी डिजाइनर के। ये बाजार की अद्भुत शक्ति है।
वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये पेंसिल का उदाहरण दिखाता है कि बाजार कितना सक्षम है, लेकिन फ्रीडमैन ये भी कहते हैं कि सरकारें इसमें दखल देती हैं, और यहीं से नियंत्रणों की तानाशाही की बात शुरू होती है।
बिल्कुल, अगले अध्याय में वो यही समझाते हैं कैसे सरकारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था को बिगाड़ते हैं। जैसे अगर सरकार दाम तय कर दे, प्राइस कंट्रोल लगा दे, तो या तो चीज की कमी हो जाती है अगर दाम बहुत कम रखा, या वो बिकती ही नहीं अगर दाम बहुत ज्यादा रखा।
हाँ, ऐसा होता है।
इसी तरह वेतन पर कंट्रोल या व्यापार पर रोक, टैरिफ, कोटा, ये सब बाजार के संकेतों को गड़बड़ा देते हैं।
वो युद्ध के समय की अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण देते हैं, या संरक्षणवाद का, जहां अपने उद्योगों को बचाने के नाम पर आम लोगों को महंगी या घटिया चीजें मिलती हैं।
और इसका उल्टा क्या है?
वो हांगकांग जैसे उदाहरण देते हैं, जहां खुला व्यापार था और उसने गरीबी कम की, समृद्धि बढ़ाई।
तो अगर ये सीधे नियंत्रण, जैसे मूल्य नियंत्रण, खराब हैं, तो क्या सरकार को लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए?
यहीं पर फ्रीडमैन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट पर आते हैं, जिसे वो पालने से कब्र तक की व्यवस्था कहते हैं। इस पर क्या विचार है उनके?
हाँ, इस पर उनका नजरिया काफी आलोचनात्मक है। वो मानते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी घर, ये भले ही अच्छे इरादों से शुरू हुई हों।
हाँ, इरादे तो नेक ही होते हैं अक्सर,
पर अक्सर इनके अनचाहे बुरे नतीजे निकलते हैं। उनका तर्क है कि ये योजनाएं लोगों को सरकार पर निर्भर बनाती हैं, डिपेंडेंसी, और ये बहुत अकुशल होती हैं, इनएफिशिएंट, मतलब पैसा बहुत बर्बाद होता है इनमें।
यहीं पर वो पैसे खर्च करने के चार तरीकों वाली बात आती है ना?
जरा समझाइए कि वो क्या है।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। फ्रीडमैन कहते हैं आप चार तरह से पैसा खर्च कर सकते हैं। एक, आप अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करें, तब आप बेस्ट चीज कम से कम दाम पर चाहेंगे, है ना?
हाँ बिल्कुल।
दो, आप अपना पैसा किसी और पर खर्च करें, जैसे तोहफा देना। तब आप दाम देखेंगे पर शायद क्वालिटी पर इतना ध्यान ना दें।
ठीक है।
तीन, आप किसी और का पैसा अपने ऊपर खर्च करें, जैसे कंपनी का क्रेडिट कार्ड। तब आप बढ़िया से बढ़िया चीज चाहेंगे, दाम की परवाह शायद कम करेंगे।
हाँ, हाँ।
और चौथा, आप किसी और का पैसा किसी और पर खर्च करें, तब न दाम की परवाह न क्वालिटी की। फ्रीडमैन का तर्क है कि ज्यादातर सरकारी कल्याण योजनाएं इसी चौथी कैटेगरी में आती हैं। ओहो, इसीलिए बर्बादी होती है।
हाँ, उनका यही मानना है, वो इसके बजाय ऋणात्मक आयकर, नेगेटिव इनकम टैक्स जैसे विकल्प सुझाते हैं, जहां सरकार सीधे जरूरतमंदों को पैसा दे दे ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से खुद खर्च करें।
ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। उस पे फ्रीडमैन का नजरिया आम सोच से अलग था, है ना?
हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महामंदी ने दिखा दिया कि पूंजीवाद फेल है, लेकिन फ्रीडमैन और उनकी सहयोगी एना श्वार्ट्ज ने अपने रिसर्च में ये तर्क दिया कि महामंदी पूंजीवाद की नहीं बल्कि सरकारी विफलता थी।
सरकारी विफलता कैसे?
खासतौर पर अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने उस दौरान बहुत बड़ी गलतियां की। उन्होंने पैसे की सप्लाई, मनी सप्लाई को बुरी तरह कम होने दिया। इससे जो एक सामान्य मंदी थी वो एक भयानक महामंदी बन गई। ये उस समय एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी विचार था।
और महंगाई, इन्फ्लेशन, ये तो आज भी हमारे लिए बड़ा सिरदर्द है। इस पे क्या कहते हैं फ्रीडमैन?
महंगाई पे फ्रीडमैन का सिद्धांत, जिसे मॉनेटरिज्म या मॉनेटरिज्म कहते हैं, शायद उनका सबसे मशहूर काम है। उनका एक बहुत विख्यात वाक्य है, मुद्रास्फीति हमेशा और हर जगह एक मौद्रिक घटना होती है।
मतलब?
मतलब ये कि महंगाई का असली कारण हमेशा यही होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तुलना में बहुत ज्यादा पैसा डाल देती है, जरूरत से ज्यादा नोट छापती है। यह असल में आम आदमी पर एक छिपा हुआ टैक्स है।
छिपा हुआ टैक्स?
हाँ, क्योंकि इससे उसके पास जो पैसा है उसकी कीमत कम हो जाती है, उसकी खरीदने की ताकत घट जाती है, और इसका सबसे बुरा असर गरीबों और फिक्स्ड इनकम वाले लोगों पर पड़ता है।
तो फिर इलाज क्या है इसका, उनके हिसाब से?
इलाज सीधा है, हालांकि करना मुश्किल हो सकता है राजनीतिक रूप से। सरकार को पैसा छापने की रफ्तार धीमी करनी होगी, एक स्थिर, एक प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी।
किताब में समानता, इक्वालिटी के मुद्दे पर भी बात हुई है, इस पर क्या रुख है उनका?
हाँ, यहाँ फ्रीडमैन एक बहुत ही अहम और अक्सर विवादित फर्क बताते हैं, अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और परिणाम की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ आउटकम।
इनमें क्या फर्क है?
उनका मानना है कि अवसर की समानता अच्छी चीज है, ये स्वतंत्रता के साथ चलती है, मतलब हर किसी को अपनी योग्यता, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी शुरू करे।
ठीक है।
लेकिन परिणाम की समानता यानी ये कोशिश करना कि सब लोग एक ही लेवल पे पहुंचें, चाहे उन्होंने मेहनत की हो या नहीं, ये स्वतंत्रता के खिलाफ है।
क्यों?
क्योंकि ऐसा करने के लिए सरकार को सफल लोगों से जबरदस्ती कुछ लेना होगा और दूसरों को देना होगा। उनकी नजर में ये अन्याय है और ये लोगों को मेहनत करने से रोकता है। वो तर्क देते हैं कि इतिहास देखें तो मुक्त बाजार ने ही गरीबी कम करने और लोगों को असली अवसर देने में सबसे ज्यादा मदद की है।
शिक्षा व्यवस्था पर भी उनकी कुछ तीखी टिप्पणियां थीं, स्कूलों के बारे में।
हाँ बिल्कुल। What's wrong with our schools? अध्याय में वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वो इसे एक सरकारी एकाधिकार, एक मोनोपोली मानते हैं, जिसमें कंपटीशन नहीं है, इसलिए क्वालिटी गिर गई है, स्कूल माँ बाप के प्रति जवाबदेह नहीं रहे।
तो समाधान क्या है?
उनका एक बहुत ही रेडिकल सुझाव था, स्कूल वाउचर सिस्टम। मतलब सरकार बच्चों को सीधे स्कूल भेजने के बजाय उनके माँ बाप को एक वाउचर दें।
अच्छा।
और वो उस वाउचर का इस्तेमाल अपनी पसंद के किसी भी स्कूल, सरकारी या प्राइवेट, की फीस भरने में कर सकें। इससे स्कूलों में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, उन्हें बेहतर बनना पड़ेगा और माँ बाप को ज्यादा चॉइस मिलेगी।
ये तो बिल्कुल अलग सोच है।
अच्छा, और आखिर में उपभोक्ता और मजदूरों का संरक्षण, रेगुलेटरी एजेंसियां, मिनिमम वेज, इनकी जरूरत नहीं है क्या? इस पर भी फ्रीडमैन का नजरिया थोड़ा अहटके है। हु प्रोटेक्ट्स यानी कौन रक्षा करता है? अध्याय में वो तर्क देते हैं कि कई बार ये रेगुलेटरी एजेंसियां, जैसे अमेरिका में FDA है,
हाँ, जो दवाओं वगैरह को मंजूरी देती है,
हाँ, वो उपभोक्ताओं का भला करने के बजाय नुकसान कर देती हैं। वो जरूरी दवाओं या प्रोडक्ट्स को मंजूरी देने में बहुत देर लगाती हैं। इसे ड्रग लैग कहते हैं। इससे लोगों को उनका फायदा नहीं मिलता।
अच्छा।
और अक्सर ये एजेंसियां रेगुलेटरी कैप्चर का शिकार हो जाती हैं। मतलब जिस एजेंसी को इंडस्ट्री पर नजर रखनी थी वो धीरे धीरे उसी इंडस्ट्री की दोस्त बन जाती है, उसी के हित देखने लगती है, जनता के नहीं।
और न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज के बारे में
उसकी भी वो आलोचना करते हैं। कहते हैं कि ये असल में कम कुशल लो स्किल्ड मजदूरों को नौकरी पाने से रोकता है, क्योंकि कंपनियां उन्हें उतना पैसा नहीं दे सकती जितना कानूनन जरूरी है। श्रमिक संघों, लेबर यूनियनों के बारे में भी कहते हैं कि वो अक्सर अपने सदस्यों यानी इनसाइडर्स को तो फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन बाकी मजदूरों, आउटसाइडर्स और उपभोक्ताओं की कीमत पर।
तो फिर रक्षा कौन करेगा?
फ्रीडमन का मानना है कि सबसे अच्छा संरक्षक कोई सरकारी एजेंसी नहीं बल्कि खुला बाजार और कॉम्पिटिशन है।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो किताब के मुख्य संदेश या कह लें की थीम्स क्या निकलते हैं?
पहला और शायद सबसे अहम, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का गहरा नाता, एक के बिना दूसरा संभव नहीं।
हाँ, ये तो बार बार आया। दूसरा?
दूसरा, बाजार की वो स्वतः स्फूर्त व्यवस्था की ताकत, कैसे लाखों लोग बिना किसी बॉस के सिर्फ कीमतों और अपने हित को देखकर एक जटिल और फायदेमंद सिस्टम बना लेते हैं, ये वाकई अद्भुत है।
तीसरा?
शायद सरकारी योजना की सीमाएं। बिल्कुल, सेंट्रल प्लानिंग की अंतर्निहित सीमाएं और विफलता है। कोई सरकार या योजना बनाने वाला इतनी जानकारी रख ही नहीं सकता, ना ही लोगों की जरूरतों को बाजार से बेहतर समझ सकता है। इसमें जबरदस्ती और अकुशलता आ ही जाती है।
चौथा, वो अनपेक्षित परिणाम वाली बात, अच्छे इरादों के बुरे नतीजे।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। किसी भी सरकारी पॉलिसी को उसके वादों से नहीं, उसके असली नतीजों से आंकना चाहिए। हम अपने आसपास भी कई योजनाओं को इस नजरिए से देख सकते हैं, है ना?
बिल्कुल। पांचवा,
जिसे हम अक्सर बाजार की विफलता कहते हैं, वो कई बार असल में पिछली किसी सरकारी विफलता का नतीजा होती है, और सरकारी दखल अक्सर समस्या को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ देता है।
छठा, प्रतिस्पर्धा और चुनाव की ताकत, कॉम्पिटिशन और चॉइस।
हाँ, ये चीजों को बेहतर, सस्ता और ज्यादा नया बनाने के लिए जरूरी है। हम रोज देखते हैं इसे, जहां ज्यादा दुकानें होती हैं वहां हमें बेहतर दाम और क्वालिटी मिलती है।
और सातवां, महंगाई पर उनका वो सीधा सा विचार।
हाँ, कि ये मूल रूप से सरकार के ज्यादा पैसा छापने का नतीजा है, एक छिपा हुआ टैक्स। जब हम देखते हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो फ्रीडमन का नजरिया हमें सोचने को कहता है कि कहीं इसका कारण सिर्फ मांग सप्लाई नहीं बल्कि पैसे की कीमत घटना तो नहीं।
इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ खास बातें जो आपको याद रही?
हाँ, कई हैं। एक तो वो समानता वाली बात बहुत जोरदार है। जो समाज स्वतंत्रता से पहले समानता परिणाम की रखता है, उसे न तो समानता मिलती है और न ही स्वतंत्रता। जो समाज स्वतंत्रता को पहले रखता है, उसे दोनों अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये आजादी और बराबरी के बीच के मुश्किल रिश्ते को दिखाता है।
हाँ, और महंगाई वाली बात तो जैसे उनकी पहचान ही बन गई।
बिल्कुल, मुद्रास्फीति हमेशा और हर जगह एक मौद्रिक घटना है, सीधी शक्तिशाली दलील।
सरकारी खर्च पर भी उनकी टिप्पणी बड़ी सटीक है।
हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी और का पैसा उतनी सावधानी से खर्च नहीं करता जितना वो अपना पैसा खर्च करता है। ये बताता है कि सरकारी योजनाओं में अक्सर इतनी बर्बादी क्यों होती है।
और मुक्त बाजार का नैतिक पहलू भी।
हाँ, एक मुक्त बाजार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कोई भी विनिमय, एक्सचेंज, तब तक नहीं होता जब तक दोनों पक्षों को लाभ ना हो। ये जोर देता है कि बाजार जबरदस्ती नहीं, आपसी सहमति और फायदे पर चलता है।
और एक थोड़ी तीखी टिप्पणी भी थी शायद।
हाँ, मुक्त बाजार के खिलाफ अधिकांश तर्कों के मूल में स्वयं स्वतंत्रता में विश्वास की कमी होती है। ये एक तरह की चुनौती है कि क्या विरोध सिर्फ आर्थिक मॉडल का है या असल में व्यक्तिगत आजादी के विचार का ही है।
ये सब विचार सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
कई तरह से। सबसे पहले तो ये हमें सरकारी नीतियों और वादों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से, ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखने में मदद करते हैं।
कैसे?
जब भी कोई नई योजना आए तो हम सिर्फ उसके बताए गए फायदों को न देखें, हम ये भी सोचें कि इसके छिपे हुए नुकसान क्या हो सकते हैं, इसकी असली कीमत कौन चुकाएगा, क्या इसके कुछ अनचाहे बुरे नतीजे हो सकते हैं।
जैसे आजकल बहुत सारी चीजें मुफ्त देने की बात होती है।
हाँ, तो फ्रीडमन के नजरिए से हम पूछ सकते हैं कि क्या ये वाकई मुफ्त है या इनकी कीमत कहीं और, किसी और तरीके से वसूली जा रही है। क्या ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय सरकार पर निर्भर बना रही हैं? ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है।
व्यक्तिगत स्तर पर शायद महंगाई की समझ काम आ सकती है।
बिल्कुल, अगर हम समझते हैं कि महंगाई सिर्फ चीजों की कमी से नहीं बल्कि पैसे की कीमत गिरने से भी होती है, तो हम अपनी बचत, अपने निवेश के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। हम ऐसी जगह पैसा लगाने की सोच सकते हैं जहां वो महंगाई से बचा रहे।
और शिक्षा के बारे में?
जब हम अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो फ्रीडमैन के विचार हमें स्कूलों में ज्यादा विकल्प, ज्यादा चॉइस और कॉम्पिटिशन की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्या मौजूदा सिस्टम ही बेस्ट है या वाउचर जैसे नए प्रयोगों पर विचार करना चाहिए?
एक उपभोक्ता के तौर पर,
हाँ, ये सोचना कि क्या हर सरकारी नियम वाकई हमारी रक्षा कर रहा है या कहीं वो नई कंपनियों को आने से रोक रहा है या चीजों को और महंगा बना रहा है। क्या कंपनियों की अपनी साख, उनकी रेपुटेशन और बाजार का कॉम्पिटिशन ज्यादा असरदार संरक्षक नहीं हो सकते?
और एक नागरिक के तौर पर शायद सरकार की भूमिका पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, ये विचार हमें ये मांग करने के लिए हिम्मत देते हैं कि सरकार अपने जरूरी कामों जैसे कानून व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा पर ध्यान दे और अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल दे, ताकि लोग और समाज अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, या कोई ऐसी बात जिसने आपको चौंकाया हो?
मेरे लिए तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो स्वतः स्फूर्त व्यवस्था वाला विचार ही है। ये सोचना ही कमाल है कि कैसे लाखों अजनबी लोग बिना किसी के कहे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में मिलकर इतनी जटिल और जरूरी चीजें बना लेते हैं। जैसे वो पेंसिल, ये इंसानी सहयोग की ताकत दिखाता है जब उसे आजादी मिलती है।
और मेरे लिए सबसे अहम सबक वो अनपेक्षित परिणामों का है। ये याद रखना कि कितने ही अच्छे इरादों से नीतियां बने, नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा सोचा गया था। इसलिए किसी भी सरकारी दखल के दावों पर हमेशा सवाल करना और उसके असल असर को देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ वादों पर नहीं, नतीजों पर ध्यान देना।
हाँ, और शायद किताब का यही स्थायी संदेश है, स्वतंत्रता काम करती है, फ्रीडम वर्क्स, आर्थिक समृद्धि के लिए भी और व्यक्तिगत गरिमा के लिए भी। ये हमें ऊपर से थोपी गई योजनाओं के बजाय नीचे से उभरने वाली तरक्की पर, यानी आजाद लोगों के सपनों, उनकी मेहनत, उनके आपसी सहयोग पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है।
एक ऐसा विचार जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज को चलाने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुनने की आजादी देना है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।